एकत्र ज्ञान गोष्ठी। आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी के इस सत्र में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आजकल हर तरफ है, अखबारों में, टीवी पर, हमारी बातों में, जलवायु परिवर्तन।
नमस्ते।
बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन शब्द सुनते ही लगता है हाँ भाई, गर्मी बढ़ रही है, बर्फ पिघल रही है।
हाँ, सब जानते हैं जैसा लगता है।
पर क्या हम वाकई इसकी पूरी तस्वीर समझते हैं, इसकी गहराई, और ये हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है, इसके जो पीचीदा पहलू हैं?
सही कह रहे हैं, आज बस उसी समझ को थोड़ा और साफ करने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल।
और इस कोशिश में हमारे आज के आधार हैं प्रोफेसर मार्क मैस्लिन की दो किताबें। पहली है उनकी काफी विस्तृत किताब क्लाइमेट चेंज अ कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक एंड सोशल ओवरव्यू। ये मतलब एक पूरा जायजा देती है।
काफी डिटेल्ड होगी ये तो।
हाँ, और दूसरी है उनकी छोटी सी किताब लेकिन बहुत काम की, क्लाइमेट चेंज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
अच्छा, वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सीरीज वाली।
हाँ वही, ये उनके लिए बहुत अच्छी है जो कम समय में ठोस जानकारी चाहते हैं। बिल्कुल पॉइंट पर।
ये बढ़िया है क्योंकि टॉपिक है इतना जरूरी।
वही तो। और ये जरूरी क्यों है? शायद इसलिए कि ये सिर्फ सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं रही। अब
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये सीधे सीधे हमारे समाज से, हमारी अर्थव्यवस्था से, सेहत से, यहाँ तक कि इंसाफ से सबसे जुड़ गया है।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ पिघलते ग्लेशियरों की कहानी नहीं है, ये उन किसानों की भी कहानी है जिनकी फसलें बदलते मौसम के कारण खराब हो रही हैं। उन शहरों की कहानी है जो बढ़ते समुद्र के खतरे से जूझ रहे हैं। उन समुदायों की कहानी है जो जो सबसे ज्यादा झेल रहे हैं इसे।
और शायद सबसे कम जिम्मेदार हैं इसके लिए।
नजरियों से थोड़ा समझें।
चलिए तो शुरू करते हैं लेखक से। प्रोफेसर मार्क मैस्लिन हैं कौन ये और इनकी बात में क्या खास है?
देखिए, प्रोफेसर मैस्लिन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL में प्रोफेसर हैं। अर्थ सिस्टम साइंस पढ़ाते हैं।
अर्थ सिस्टम साइंस, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान।
जी, और ये मतलब अपने फील्ड के बहुत जाने माने एक्सपर्ट हैं।
और सुना है इनकी विशेषज्ञता सिर्फ आज के जलवायु परिवर्तन तक ही नहीं है।
हाँ, यही बात उन्हें और भी दिलचस्प बनाती है। वो सिर्फ आज की बात नहीं करते, वो पूरा जलवायु विज्ञानी भी हैं। पैलियोक्लाइमेटोलॉजिस्ट।
पैलियोक्लाइमेटोलॉजिस्ट
मतलब वो लाखों साल पहले पृथ्वी की जलवायु कैसी थी इसका अध्ययन करते हैं, बर्फ के कोर से, पेड़ों के छल्लों से।
अच्छा, तो वो आज के बदलाव को एक एक ऐतिहासिक नजरिए से देख पाते हैं।
एग्जैक्टली। उन्हें पता है कि पृथ्वी की जलवायु पहले भी बदली है, लेकिन आज जो हो रहा है, उसकी रफ्तार, उसका स्केल, वो कितना अलग है, वो ये समझा पाते हैं कि ये नॉर्मल क्यों नहीं है।
और वो सिर्फ एक एकेडमिक रिसर्चर ही नहीं है, है ना? मतलब लैब में ही नहीं रहते।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनमें ये कमाल की खूबी है कि वो मुश्किल वैज्ञानिक बातों को आम लोगों तक बहुत आसान भाषा में पहुंचा सकते हैं। वो लिखते हैं, बोलते हैं, सरकारों को, कंपनियों को सलाह देते हैं।
कम्युनिकेटर भी हैं।
हाँ, बहुत अच्छे। और यही चीज उनकी किताबों में दिखती है। वो विज्ञान को समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, इन सब से जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं, सिर्फ आंकड़े नहीं देते।
चलिए, ये तो लेखक की बात हुई, अब आते हैं इन किताबों के मूल संदेश पर। इनका निचोड़ क्या है, क्या कहना चाहते हैं मैस्लिन?
देखिए, सबसे बुनियादी और साफ बात जो वो कहते हैं वो ये है कि जलवायु परिवर्तन कोई कहानी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, ये एक ठोस वैज्ञानिक सच्चाई है।
मतलब इस पर अब कोई शक नहीं,
वैज्ञानिकों के बीच तो बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे मुख्य कारण हम इंसान हैं, खासकर औद्योगिक क्रांति के बाद से, मतलब जब से हमने कोयला, तेल, गैस चलाना शुरू किया है बड़े पैमाने पर।
और वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि इसे सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना चाहिए।
बिल्कुल, वो कहते हैं ये बहुत बड़ी भूल होगी, ये तो हमारी अर्थव्यवस्था की जड़ों तक जाता है, समाज में जो गैर बराबरी है उसे और बढ़ा सकता है,
देशों के बीच तनाव।
हाँ, सुरक्षा का मुद्दा है, और आखिरकार जैसा आपने कहा, हमारी पूरी सभ्यता के लिए एक चुनौती है।
और उनका एक और पॉइंट था सामाजिक न्याय वाला।
हाँ, वो बहुत अहम है। वो कहते हैं कि सिर्फ विज्ञान समझना काफी नहीं है, हमें उन सामाजिक और आर्थिक सिस्टम्स को भी देखना होगा जो इस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं।
जैसे?
जैसे कि कैसे कुछ समुदाय, अक्सर वही जो सबसे कम जिम्मेदार हैं, वो इसके सबसे बुरे नतीजे भुगत रहे हैं। तो ये सिर्फ विज्ञान नहीं, ये एक नैतिक और न्याय का सवाल भी बन जाता है।
और जो छोटी वाली किताब है, वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन,
उसमें
वो तो शायद और भी सीधी बात करती है।
हाँ, वो बिल्कुल कट टू द पॉइंट है। वो कहती है, भाई अब बहस का टाइम गया, ये फैक्ट है, वैज्ञानिकों में इसे लेकर जबरदस्त सहमति है।
लेकिन क्या सब कुछ निराशाजनक ही है या कोई उम्मीद भी है?
नहीं, उम्मीद है। मैसलिन ये भी साफ करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, चुनौती बहुत बड़ी है, पहाड़ जैसी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास रास्ते नहीं है,
समाधान मौजूद है।
हाँ, समाधान है, टेक्नोलॉजी है, जरूरत किस चीज की है? जरूरत है वैश्विक सहयोग की, एक साथ आने की, नई सोच अपनाने की, और समाज और अर्थव्यवस्था में जो जरूरी बदलाव हैं उन्हें लाने की हिम्मत दिखाने की।
तो मतलब एक्शन की बात है, निराशा की नहीं।
बिल्कुल एक्शन की।
ये तो हुई एक ओवरव्यू।
हाँ।
अब जरा कुछ बेसिक चीजें समझते हैं जो बार बार आती हैं।
हाँ।
जैसे मौसम और जलवायु। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या फर्क है इनमें?
सम पैटर्न है।
लंबे समय मतलब कितना लंबा?
मान लीजिए 30 साल या उससे ज्यादा का एवरेज। तो अगर दिल्ली में दिसंबर में एक दो दिन ज्यादा ठंड नहीं पड़े तो हम ये नहीं कह सकते कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा। हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना होता है।
अच्छा, ठीक है, ये साफ हुआ। और ये ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये क्या चीज है? इसका जिक्र तो हमेशा होता है।
ग्रीन हाउस प्रभाव, देखिए, ये अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये जरूरी है पृथ्वी पर जीवन के लिए।
ओ, जरूरी है?
हाँ, हमारी धरती के चारों ओर कुछ गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, इनकी एक परत है, कंबल की तरह समझ लीजिए। ये सूरज से आने वाली गर्मी का कुछ हिस्सा रोक लेती है, इससे रात में धरती एकदम ठंडी नहीं हो जाती। अगर ये परत ना होती तो पृथ्वी बर्फ का गोला होती।
तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हम इसे नेगेटिव क्यों मानते हैं?
प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हमने, मतलब औद्योगिक क्रांति के बाद, फैक्ट्रियों, गाड़ियों, बिजली घरों के लिए अंधाधुंध कोयला, तेल, गैस जलाना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CH4, ये हवा में बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच गई।
तो वो कंबल मोटा हो गया।
बिल्कुल सही, वो कंबल मोटा हो गया और अब वो जरूरत से ज्यादा गर्मी रोकने लगा है। बस यही जो बढ़ावा ग्रीन हाउस प्रभाव है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन कहते हैं।
अच्छा, तो ये गैसें बढ़ रही हैं, गर्मी बढ़ रही है, लेकिन हम इतने पक्के तौर पर कैसे कह सकते हैं कि ये जो बदलाव हो रहा है ये वाकई असामान्य है? मतलब शायद ये नेचुरल साइकिल हो, या शायद वो पूरा जलवायु विज्ञान काम आता है।
हाँ बिल्कुल, यहीं पर अतीत का अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है। जैसा मैंने कहा, वैज्ञानिक लाखों साल पुरानी बर्फ की परतों को ड्रिल करके निकालते हैं, आइस कोर कहते हैं उन्हें।
आइस कोर, बर्फ के अंदर क्या मिलता है?
उन बर्फ की परतों में हवा के छोटे छोटे बुलबुले फंसे होते हैं, लाखों साल पुरानी हवा।
वाह!
वैज्ञानिक उन बुलबुलों का विश्लेषण करके पता लगा सकते हैं कि उस समय हवा में CO2 कितनी थी, मीथेन कितनी थी, और बर्फ के आइसोटोप से उस समय का तापमान भी पता चल जाता है।
और पेड़ों के छल्ले, उनसे कैसे पता चलता है?
पेड़ों के छल्ले हर साल बनते हैं, उनकी चौड़ाई उस साल के मौसम पर निर्भर करती है, बारिश, तापमान। तो पुराने पेड़ों के छल्लों का पैटर्न देखकर भी अतीत की जलवायु का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह मूंगे हैं, झीलों की तलछट है, कई तरीके हैं।
और इन सब अध्ययनों से क्या निष्कर्ष निकलता है?
निष्कर्ष ये है कि हाँ, पृथ्वी की जलवायु हमेशा बदलती रही है, बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, हिमयुग आए हैं, गए हैं, लेकिन आज जो बदलाव हम देख रहे हैं, खासकर पिछली 1.5 सदी में, उसकी रफ्तार अभूतपूर्व है। मतलब इतनी तेजी से तापमान और CO2 का लेवल पहले कभी नहीं बढ़ा, कम से कम पिछले कई लाख सालों में तो नहीं। ये रफ्तार ही सबसे बड़ी चिंता की बात है।
रफ्तार, ये अहम पॉइंट है। पर ये कैसे साबित होता है कि इस रफ्तार के पीछे हम इंसान ही हैं? क्या सिर्फ CO2 बढ़ना ही काफी सबूत है?
नहीं, सिर्फ CO2 का बढ़ना ही नहीं, कई अलग अलग तरह के सबूत हैं जो एक ही दिशा में इशारा करते हैं। पहला तो जाहिर है, CO2 का लेवल।
हाँ,
चार्ल्स कीलिंग ने 1950 में हवाई में CO2 नापना शुरू किया था। उनका कीलिंग कर्व ग्राफ साफ दिखाता है कि CO2 कैसे साल दर साल बढ़ रही है। आज ये लेवल पिछले 8 लाख साल में कभी इतना ऊंचा नहीं रहा।
बाप रे, 8 लाख साल!
जी, और ये बढ़त ठीक तब से तेज हुई है जब से हमने जीवाश्म ईंधन जलाना शुरू किया। ये महज संयोग नहीं हो सकता।
और इसके अलावा क्या सबूत है?
कई हैं। एक तो दुनिया भर में जमीन और समुद्र दोनों का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं और ट्रेंड बिल्कुल साफ है। दूसरा, बर्फ पिघल रही है, पहाड़ों पर ग्लेशियर्स तेजी से सिकुड़ रहे हैं, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की जो विशाल बर्फ की चादरें हैं वो पिघल रही हैं। आर्कटिक में गर्मियों में समुद्री बर्फ बहुत कम हो जाती है।
इसका असर समुद्र के लेवल पर भी पड़ता होगा।
बिल्कुल, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। इसके दो कारण हैं, एक तो पानी गर्म होने पर फैलता है, इसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं।
अच्छा।
और दूसरा, जमीन पर जो बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर, आइस शीट, वो पानी बनकर समुद्र में जा रहा है।
और एक और बात सुनी थी, महासागरों के अम्लीकरण की, एसिडिफिकेशन।
हाँ, वो भी एक बड़ा सबूत है। समुद्र हवा से अतिरिक्त CO2 सोख रहे हैं। जब CO2 पानी में घुलती है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाती है, जिससे पानी ज्यादा एसिडिक हो जाता है।
इसका क्या असर होता है?
ये समुद्री जीवों के लिए बहुत बुरा है, खासकर उनके लिए जो अपने खोल या कंकाल बनाते हैं, जैसे सीप, घोंगे, मूंगे। पानी ज्यादा एसिडिक होने पर उनके लिए ये बनाना मुश्किल हो जाता है।
तो मतलब तापमान बढ़ना, बर्फ पिघलना, समुद्र का लेवल बढ़ना, एसिडिफिकेशन, ये सब मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं।
हाँ, ये सारे अलग अलग पजल के टुकड़े हैं जो एक ही तस्वीर बनाते हैं। धरती गर्म हो रही है और इसकी मुख्य वजह मानवीय गतिविधियां हैं। वैज्ञानिक इसे एट्रिब्यूशन कहते हैं, यानी ये तय करना कि बदलाव का कारण क्या है, और इस पर अब बहुत पुख्ता सबूत है।
ये सारे सबूत वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं। तो क्या मैस्लिन की किताबें भविष्य के बारे में भी कुछ बताती हैं? अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो क्या हो सकता है, ये जो क्लाइमेट मॉडल्स होते हैं?
हाँ, क्लाइमेट मॉडल्स, ये भविष्य की भविष्यवाणी करने वाली कोई जादुई चीज नहीं है।
नहीं
नहीं, ये बेसिकली सुपर कंप्यूटर पर चलने वाले बहुत जटिल प्रोग्राम है। ये भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान के जो नियम हम जानते हैं उन पर आधारित हैं।
तो ये करते क्या है?
वैज्ञानिक इनमें अलग अलग सिनेरियो या परिदृश्य डालकर देखते हैं। जैसे अगर हम ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन आज के लेवल पर ही जारी रखते हैं तो क्या होगा, अगर हम उसे कम करते हैं तो क्या होगा, अगर बहुत तेजी से कम करते हैं तो क्या होगा।
और इन मॉडल से क्या पता चलता है, क्या बड़े संकेत मिलते हैं?
लगभग सारे मॉडल एक बात पर सहमत हैं, अगर हमने उत्सर्जन कम करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो पृथ्वी और ज्यादा गर्म होती जाएगी। सदी के अंत तक तापमान कई डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है।
कई डिग्री, इसका मतलब क्या होगा?
इसका मतलब होगा और ज्यादा भीषण गर्मी की लहरें, कहीं ज्यादा सूखा, कहीं ज्यादा भारी बारिश और बाढ़, समुद्र का स्तर और तेजी से बढ़ना। मतलब वो सारे प्रभाव जो हम आज देख रहे हैं वो और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे।
ये मॉडल क्या ये भी बताते हैं कि किस इलाके में क्या असर होगा?
हाँ, कुछ हद तक वो हमें क्षेत्रीय प्रभावों का भी अंदाजा देते हैं, जैसे भारत में मॉनसून पर क्या असर पड़ सकता है। हालांकि रीजनल लेवल पर थोड़ी अनिश्चितता ज्यादा होती है ग्लोबल एवरेज के मुकाबले, लेकिन ओवरऑल पिक्चर साफ है, इन एक्शन यानी कुछ न करने के परिणाम गंभीर होंगे।
और इसी कॉन्टेक्स्ट में टिपिंग पॉइंट्स का जिक्र आता है। ये शब्द ही बड़ा डरावना लगता है, क्या है ये
टिपिंग पॉइंट्स? हाँ, ये वाकई चिंता की बात है। आप इन्हें जलवायु प्रणाली की नाजुक दहलीजें समझ सकती हैं।
दहलीजें
मतलब एक ऐसी सीमा जिसे अगर पार कर लिया जाए तो सिस्टम में अचानक बहुत बड़े और शायद ऐसे बदलाव आ सकते हैं जिन्हें फिर वापस पलटा ना जा सके। इररिवर्सिबल।
जैसे कोई उदाहरण?
जैसे एक चिंता है कि एक खास तापमान के बाद ग्रीनलैंड की पूरी बर्फ की चादर का पिघलना तय हो जाएगा, भले ही बाद में हम तापमान कम भी कर लें वो पिघलती रहेगी।
और उससे क्या होगा?
उससे समुद्र का जलस्तर कई मीटर, शायद 6-7 मीटर तक बढ़ सकता है। सोचिए दुनिया के तटीय शहरों का क्या होगा।
बापरे।
और कोई उदाहरण?
अमेज़न का जंगल, हो सकता है कि बढ़ते तापमान और कम बारिश के कारण वो इतना सूख जाए कि वो जंगल ना रहकर घास का मैदान यानी सवाना बन जाए।
जंगल का सवाना बनना, इससे क्या फर्क पड़ेगा?
बहुत बड़ा। अमेज़न आज भारी मात्रा में कार्बन सोखता है, अगर वो सवाना बन गया तो वो कार्बन सोखना बंद कर देगा, बल्कि शायद कार्बन छोड़ने लगेगा। इससे ग्लोबल वार्मिंग और तेज हो जाएगी।
एक और सुना था परमाफ्रॉस्ट के बारे में, आर्कटिक की जमीन।
हाँ, परमाफ्रॉस्ट, ये वो जमीन है जो आर्कटिक में हजारों सालों से जमी हुई है। उसमें भारी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें कार्बन और मीथेन बंद है। अगर ये पिघलने लगती है तो ये गैसें हवा में रिलीज होंगी।
और मीथेन तो CO2 से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, शॉर्ट टर्म में मीथेन CO2 से कई गुना ज्यादा गर्मी रोकती है, तो परमाफ्रॉस्ट का पिघलना एक और फीडबैक लूप शुरू कर सकता है जो वार्मिंग को और बढ़ाएगा। ये टिपिंग पॉइंट्स इसीलिए डरावने हैं क्योंकि एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर सकते हैं जिससे जलवायु परिवर्तन अचानक बेकाबू हो सकता है।
ये सब सुनकर लगता है कि मैस्लिन की किताबों से कुछ बहुत जरूरी संदेश निकलते हैं। पहला तो यही कि वैज्ञानिक सबूत मतलब अकाट्य है।
हाँ बिल्कुल, छोटी मोटी डिटेल्स पर बहस हो सकती है, लेकिन जो कोर मैसेज है कि धरती गर्म हो रही है और इंसान जिम्मेदार है, इस पर वैज्ञानिकों में जबरदस्त सहमति है, इसे नकारना अब मुश्किल है।
दूसरा अहम संदेश जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है वो है सामाजिक न्याय वाला पहलू। कि ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये उन लोगों का मुद्दा है जो इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं पर सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं। भारत में ही हम देखते हैं, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है।
हाँ, और मार सबसे ज्यादा गरीब पर, हाशिए पर जो समुदाय हैं उन पर पड़ती है। मैस्लिन इसी बात को उभारते हैं कि कैसे ऐतिहासिक अन्याय और आज का जलवायु अन्याय आपस में जुड़े हुए हैं।
तीसरा कि सब कुछ आपस में जुड़ा है, इसे अलग अलग करके नहीं देख सकते। जलवायु, समाज, अर्थव्यवस्था, सेहत, सुरक्षा।
बिल्कुल, एक चीज बदलती है तो उसका असर सब पर पड़ता है। जैसा आपने कहा खेती पर असर पड़ा तो खाद्य सुरक्षा पर असर, लोगों का विस्थापन, शहरों पर दबाव, स्वास्थ्य पर असर, ये एक चेन रिएक्शन है।
चौथा संदेश है तात्कालिकता का, अर्जेंसी, कि अब इंतजार का वक्त नहीं है।
हाँ, ये बहुत जरूरी है, हमें फौरन और बड़े पैमाने पर बदलाव करने होंगे, छोटे मोटे कदमों से काम नहीं चलेगा।
किस तरह के बदलाव?
ऊर्जा बनाने के तरीके बदलने होंगे, कोयले तेल से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड पर जाना होगा, खेती को सस्टेनेबल बनाना होगा, शहरों की प्लानिंग बदलनी होगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बदलना होगा, मतलब हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और समाज को डीकार्बोनाइज करना होगा।
और वो भी तेजी से।
हाँ, अगले कुछ दशकों में ये ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा।
और पांचवा संदेश जो थोड़ी राहत देता है कि समाधान मौजूद है।
बिल्कुल, मैस्लिन निराशावादी नहीं है, वो कहते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सोलर पावर, विंड पावर सस्ती हो रही हैं, एनर्जी एफिशिएंसी की तकनीकें हैं, वनों को बचाने और बढ़ाने के तरीके पता हैं।
तो फिर रुकावट कहाँ है?
असली रुकावट, वो कहते हैं, तकनीकी नहीं है, असली रुकावट है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, बड़े आर्थिक हितों का टकराव और हम सबकी अपनी आदतें और लाइफस्टाइल बदलने में हिचकिचाहट, सोशल इनर्शिया।
मैस्लिन की कुछ बातें सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं, जैसे उनका वो कहना कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है,
यह एक विकास का मुद्दा है, एक सुरक्षा का मुद्दा है और अंततः एक सामाजिक न्याय का मुद्दा है।
हाँ, ये लाइन पूरी सोच बदल देती है।
बिल्कुल, ये से सिर्फ पर्यावरण मंत्रालय का काम नहीं रहने देती, ये तो हर मंत्रालय, हर नागरिक का काम बन जाता है। और ये वाला कथन भी देखिए, विज्ञान स्पष्ट है, मानवीय गतिविधियां पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को इस तरह से बदल रही हैं जिसके आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर परिणाम होंगे।
ये सीधी जिम्मेदारी की बात है।
हाँ, कि हम आज जो कर रहे हैं उसका असर भविष्य पर पड़ेगा, हमारी जवाबदेही है।
और तापमान में छोटे अंतर के बड़े नतीजों पर उनकी ये बात बहुत मार्की की है, तापमान वृद्धि का हर आधा डिग्री मायने रखता है।
1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के बीच का अंतर पूरे द्वीप राष्ट्रों के अस्तित्व या गायब होने का मतलब हो सकता है।
सिर्फ आधा डिग्री।
हाँ, सोचिए, हमारे लिए शायद आधा डिग्री कुछ ना हो, पर किसी देश के लिए वो जीवन मरण का सवाल है।
ये पेरिस समझौते के लक्ष्यों की अहमियत बताता है।
और समाधानों पर उनका ये कहना कि ये सिर्फ तकनीकी नहीं है।
हाँ, कि वे हमें ये फिर से कल्पना करने की आवश्यकता है कि हम अपने समाजों और अर्थव्यवस्थाओं को कैसे व्यवस्थित करते हैं।
ये बहुत गहरी बात है।
मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी बदल देना काफी नहीं है।
नहीं, हमें अपनी सोच, अपने जीने का तरीका, अपनी वैल्यूज, इन सब पर सवाल उठाना होगा कि हम कैसी तरक्की चाहते हैं, हम सफलता किसे मानते हैं। ये एक बुनियादी बदलाव की मांग है।
अब फिर आम इंसान क्या करे? इतनी बड़ी समस्या के सामने एक व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है? क्या हमारे छोटे छोटे एक्शन से कोई फर्क पड़ता है?
मैस्लिन का मानना है कि हाँ, फर्क पड़ता है, दो वजहों से। एक तो जब लाखों करोड़ों लोग छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो उसका कलेक्टिव असर बड़ा होता है। और दूसरा, व्यक्तिगत बदलाव अक्सर बड़े व्यवस्थागत बदलावों की मांग को ताकत देते हैं। जब लोग जागरूक होते हैं तो वो सरकारों और कंपनियों पर दबाव डालते हैं।
तो निजी स्तर पर क्या किया जा सकता है?
शुरुआत कहाँ से करें?
सबसे पहला कदम है अपने कार्बन फुटप्रिंट को समझना, मतलब हमारी एक्टिविटीज से कितनी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, फिर उसे कम करने की कोशिश करना।
कैसे? कुछ उदाहरण? कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। बिजली बचाएं, बेवजह लाइट, पंखे, एसी ना चलाएं, एनर्जी एफिशिएंट उपकरण इस्तेमाल करें,
एलईडी बल्ब, 5-स्टार रेटिंग वाले फ्रिजेस, एसी।
हाँ, दूसरा, आने जाने के तरीके, जहां तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल या पैदल, गाड़ी जरूरी हो तो फ्यूल एफिशिएंट या इलेक्ट्रिक, हवाई यात्रा कम करें क्योंकि उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होता है।
खाने पीने में भी कुछ कर सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, रेड मीट जैसे बीफ या मटन का उत्पादन बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें पैदा करता है, उसे कम करना या शाकाहार की तरफ जाना एक बड़ा कदम हो सकता है, और खाने की बर्बादी रोकना।
और हमारी खरीदने की आदतें?
कम खरीदें, सोच समझकर खरीदें, टिकाऊ चीजें लें, चीजों को फेंकने के बजाय रिपेयर कराएं, रिसाइकल करें, फास्ट फैशन से बचें।
ये तो हुई व्यक्तिगत कोशिशें, लेकिन जैसा आपने कहा, ये व्यवस्थागत बदलाव की मांग से भी जुड़ना चाहिए।
बिल्कुल, सिर्फ व्यक्तिगत एक्शन काफी नहीं है, हमें नागरिक के तौर पर भी एक्टिव होना होगा।
कैसे?
उन पर काम कीजिए।
और एक नागरिक के तौर पर
समझिए कि सरकारें क्लाइमेट चेंज पर क्या कर रही हैं, क्या पॉलिसी बना रही हैं। वोट देते समय इसे एक मुद्दा बनाइए, अपने नेताओं से सवाल पूछिए, उन पर एक्शन के लिए दबाव बनाइए।
अपने काम की जगह पे भी कुछ कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, सोचिए कि आपका काम या आपकी कंपनी कैसे ज्यादा सस्टेनेबल हो सकती है।
और सबसे जरूरी शायद बातचीत करना।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। इस मुद्दे पर बात करें अपने दोस्तों से, परिवार से, सहकर्मियों से, तथ्यों के आधार पर, शांति से। गलत जानकारी को चुनौती दें, सही जानकारी फैलाएं। चुप्पी तोड़ना बहुत जरूरी है।
ये सब सुनकर मेरे लिए जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये कि जलवायु परिवर्तन कितना इंटरकनेक्टेड मुद्दा है। ये सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं है, ये हमारे समाज के हर रेशे से जुड़ा है। भी देता है।
बिल्कुल।
हाँ, चुनौती बड़ी है पर हम असहाय नहीं हैं।
बिल्कुल, मेरे लिए भी यही। ये जानना कि एक्शन संभव है, ये निराशा को कम करता है और ये एहसास कि ये सिर्फ सरकारों या बड़ी कंपनियों का काम नहीं है, इसमें हम सबकी भूमिका है। मैस्लिन की किताबें इसी एहसास को जगाती हैं।
हाँ, और वो तात्कालिकता का भाव भी कि अब और देर नहीं कर सकते। विज्ञान इतने सालों से कह रहा है अब एक्शन का टाइम है। मैस्लिन की किताबें जटिल विषय को बहुत स्पष्टता से रखती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं।
सही का, वो सिर्फ समस्या नहीं बताते, समाधान की दिशा भी दिखाते हैं और हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं।
तो आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ, जरूर।
जब हम जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो हम भविष्य के लिए कैसा समाज बनाना चाहते हैं? किन मूल्यों को हम प्राथमिकता देना चाहेंगे? क्या हम सिर्फ शॉर्ट टर्म आर्थिक फायदे देखेंगे या एक ऐसा भविष्य चुनेंगे जो ज्यादा न्यायपूर्ण हो, ज्यादा टिकाऊ हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहतर हो?
ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।